भागवतम दशम स्कंद अध्याय 23 ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद। ग्वाल बालों ने कहा, हे महाबाहू राम, हे दुष्ट दलन कृष्ण, हम सब भूख से त्रस्त हैं, इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ग्वाल बालों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर देवकी पुत्र भगवान ने अपने कुछ भक्तों को, जो कि ब्राह्मण पत्नियां थी, प्रसन्न करने की इच्छा से इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम लोग यज्ञशाला में जाओ, जहां वैदिक आदेशों में निपुण ब्राह्मणों का एक समूह स्वर्ग जाने की इच्छा से इस समय अंगिरथ यज्ञ कर रहा है। हे ग्वाल भालो, तुम वहां जाकर कुछ भोजन मांग लाओ। उनसे मेरे बड़े भाई भगवान बलराम का तथा मेरा भी नाम बतलाना और बताना कि उन्होंने ही हम लोगों को भेजा है। भगवान से यह आदेश पाकर ग्वाल बालों ने वहां जाकर निवेदन किया। वे ब्राह्मणों के समक्ष विनय पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े रहे और फिर भूमि पर लेटकर उन्हें नमस्कार किया। ग्वाल बालों ने कहा, हे पृथ्वी के देवताओं, कृपया हमारी बात सुने। हम ग्वाल बाल कृष्ण का आदेश लेकर आए हैं और हमें बलराम ने यहाँ भेजा है। हम आपका कल्याण चाहते हैं, आप हमारा आगमन स्वीकार करें। भगवान राम तथा भगवान अच्युत यहाँ से निकट ही अपनी गांव में चरा रहे हैं। वे भूखे हैं और चाहते हैं कि आप उन्हें अपने पास से कुछ भोजन दें। अतः हे ब्राह्मणों, हे धर्म के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, यदि आपकी श्रद्धा है तो उनके लिए कुछ भोजन दे दें। हे शुद्धतम ब्राह्मणों, यज्ञकर्ता की दीक्षा तथा वास्तविक पशु यज्ञ के मध्य की अवधि को छोड़कर तथा सौत्रा मणि के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में दीक्षित व्यक्ति के लिए भी भोजन करना दूषित नहीं है। ब्राह्मणों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से किए गए इस निवेदन को सुना, फिर भी उन्होंने इसको अनसुना कर दिया। दरअसल वे शूद्र भावनाओं से पूरित थे और विस्तृत कर्म कांड में लगे थे। यद्यपि वे वैदिक ज्ञान में अपने को बड़ा चढ़ा मान रहे थे, किंतु वास्तव में वे अनुभव विहीन मूर्ख थे। यद्यपि यज्ञ करने की सारी सामग्री, स्थान, समय, विशेष सामग्री, मंत्र, अनुष्ठान, पुरोहित, अग्नि, देवता, यजमान, हवि तथा अभी तक के देखे गए लाभकारी परिणाम, ये सभी भगवान के ऐश्वर्य के विविध पक्ष हैं, किंतु ब्राह्मणों ने अपनी विकृत बुद्धि के कारण भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति के रूप में देखा। वे यह न समझ पाए कि वे पर ब्रह्म हैं, साक्षात भगवान हैं, जिन्हें भौतिक इंद्रियां सामान्य रूप से अनुभव नहीं कर पाती। अतः मर्त्य शरीर से अपनी झूठी पहचान करने से मोहित उन सबों ने भगवान के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित नहीं किया। जब वे ब्राह्मण हाँ या ना में भी उत्तर नहीं दे पाए तो हे परंतप परीक्षित, सारे ग्वाल बाल निराश होकर कृष्ण तथा राम के पास लौट आए और उनको यह बात बतलाई। जो कुछ हुआ था उसे सुनकर ब्रह्मांड के स्वामी भगवान हंसने लगे। तत्पश्चात उन्होंने पुनः ग्वाल बालों को इस जगत में जिस तरह लोग कर्म करते हैं उस मार्ग को दिखलाते हुए संबोधित किया। भगवान कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण पत्नियों से कहो कि मैं संकर्षण समेत यहां आया हूं, वे अवश्य ही तुम्हें जितना भोजन चाहोगे उतना देंगी, क्योंकि वे मेरे प्रति अत्यंत स्नेहमयी हैं और वे अपनी बुद्धि से मुझ में ही निवास करती हैं। तब ग्वाल भाल उस घर में गए जहां ब्राह्मण पत्नियां ठहरी हुई थी। वहां उन बालकों ने उन सती स्त्रियों को सुंदर आभूषणों से अलंकृत होकर बैठे देखा। बालकों ने ब्राह्मण पत्नियों को नमस्कार करते हुए विनीत भाव से उन्हें संबोधित किया। ग्वाल बालों ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों की पत्नियों, आपको हमारा नमस्कार, कृपया हमारी बात सुने। हमें भगवान कृष्ण ने यहाँ भेजा है जो यहाँ से कुछ ही दूरी से होकर जा रहे हैं। वे ग्वाल बालों तथा बलराम के साथ गांव में चराते हुए बहुत दूर निकल आए हैं। अब वे भूखे हैं, अतएव आप उन्हें तथा उनके साथियों के लिए कुछ भोजन दे दें। ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण का दर्शन करने के लिए सदैव उत्सुक रहती थी, क्योंकि उनके मन भगवान की कथाओं से मुग्ध ही चले थे। अतः ज्यों ही उन्होंने सुना कि कृष्ण आए हैं, वे अत्यंत उतावली हो उठी। बड़े बड़े पात्रों में उत्तम स्वाद तथा सुगंध से पूर्ण चारों प्रकार का भोजन लेकर सारी स्त्रियां अपने प्रियतम से मिलने उसी तरह आगे बढ़ चली जिस तरह नदियां समुद्र की ओर बहती हैं। यद्यपि उनके पतियों, भाइयों, पुत्रों तथा अन्य संबंधियों ने उन्हें जाने से रोका, किंतु कृष्ण के दिव्य गुणों का दीर्घ काल से श्रवण करते रहने से कृष्ण को देखने की उनकी आशा विजयी हुई। उन्होंने यमुना नदी के किनारे अशोक वृक्षों की कोपलों से सुशोभित एक बगीचे में ग्वाल बालों तथा अपने बड़े भाई बलराम के साथ विचरण करते हुए कृष्ण को देख लिया। उनका रंग श्यामल था और वस्त्र सुनहले थे। वे मोर पंख, रंगीन खनिज, फूल की कलियों का गुच्छा तथा जंगल के फूलों और पत्तियों की वनमाला धारण किए हुए नाटक के नर्तक की भांति वेश बनाए थे। वे अपना एक हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखे थे और दूसरे से कमल का फूल घुमा रहे थे। उनके कानों में कुमुदिनियां सुशोभित थी, उनके बाल गालों पर लटक रहे थे और उनका कमल सदृश मुख हंसी से युक्त था। हे नरेंद्र, उन ब्राह्मण पत्नियों ने दीर्घ काल से अपने प्रिय कृष्ण के विषय में सुन रखा था और उनका यश उनके कानों का स्थायी आभूषण बन चुका था, उनके मन सदैव उन्हीं में लीन रहते थे। अब उन्होंने अपने नेत्रों के छिद्रों से होकर उन्हें अपने हृदय में प्रविष्ट कर लिया और फिर दीर्घ काल तक अपने हृदय के भीतर उनका आलिंगन करती रही। इस तरह अंततः उनकी वियोग पीड़ा उसी प्रकार जाती रही जिस प्रकार की मुनिगण अपने अंतःकरण का आलिंगन करने से मिथ्या अहंकार की चिंता त्याग देते हैं। समस्त प्राणियों के विचारों के साक्षी भगवान कृष्ण यह समझ गए कि किस तरह अपनी सारी सांसारिक आशाओं का परित्याग करके ये स्त्रियां केवल उन्हें ही देखने आई हैं। अतः अपने मुख पर हंसी लाते हुए उनसे उन्होंने इस प्रकार कहा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे परम भाग्यशालिनी महिलाओं, स्वागत है, कृपया आराम से बैठें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आप मुझे देखने के लिए यहां आई, यह बहुत ही उपयुक्त है। निश्चय ही कुशल लोग जो अपने असली लाभ को देख सकते हैं, वे मेरी अहेतुकी तथा अविच्छिन्न भक्ति करते हैं, क्योंकि मैं आत्मा को सर्वाधिक प्रिय हूं। आत्मा के संपर्क से ही जीव का प्राण, बुद्धि, मन, मित्रगण, शरीर, पत्नी, संतान, संपत्ति इत्यादि उसे प्रिय लगते हैं। अतएव अपने आप से बढ़कर कौन सी वस्तु अधिक प्रिय हो सकती है? अतएव तुम लोग यज्ञ स्थल को लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति जो कि विद्वान ब्राह्मण हैं, गृहस्थ हैं और उन्हें अपने अपने यज्ञ संपन्न करने के लिए तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया, हे विभो, आप ऐसे कटु वचन न कहें। आपको चाहिए कि आप अपने उस वचन को पूरा करें कि आप अपने भक्तों को सदैव प्रतिदान करते हैं। क्योंकि अब हम आपके चरणों को प्राप्त हैं, अतः हम इतना ही चाहती हैं कि हम वन में ही रहती जाएं, जिससे हम तुलसी दल की उन मालाओं को अपने सिरों पर धारण कर सकें, जिन्हें आप उपेक्षा पूर्वक अपने चरण कमलों से ठुकरा देते हैं। हम अपने सारे भौतिक संबंध त्यागने को तैयार हैं। अब हमारे पति, माता पिता, पुत्र, भाई, अन्य संबंधी तथा मित्र हमें वापस नहीं लेंगे और अन्य कोई हमें किस तरह शरण देने को तैयार हो सकेगा? क्योंकि अब हमने अपने आप को आपके चरण कमलों पर पटक दिया है और हमारे कोई अन्य गंतव्य नहीं है। अतएव हे अरिंदम, हमारी इच्छा पूरी कीजिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उत्तर दिया, तुम यह विश्वास करो कि न तो तुम्हारे पतिगण तुम लोगों के प्रति शत्रु भाव रखेंगे, न ही तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र, अन्य संबंधी जन या आम जनता। मैं स्वयं उन्हें सारी स्थिति समझा दूंगा। यहां तक कि देवता गण भी अपना अनुमोदन व्यक्त करेंगे। तुम सबों का मेरे शारीरिक सानिध्य में रहना निश्चय ही इस जगत के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, न ही इस प्रकार से तुम मेरे प्रति अपने प्रेम को ही बढ़ा सकोगी। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मन को मुझ में स्थिर करो और इस तरह शीघ्र ही तुम मुझे पा सकोगी। मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्चा विग्रह स्वरूप का दर्शन करने, मेरा ध्यान धरने तथा मेरे नामों एवं महिमाओं का कीर्तन करने से ही मेरे प्रति प्रेम बढ़ता है, भौतिक सानिध्य से नहीं। अतएव तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह आज्ञा पाकर ब्राह्मण पत्नियां यज्ञ स्थल पर लौट गई। ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों में कोई दोष नहीं निकाला और उन्होंने उनके साथ साथ यज्ञ पूरा किया। उनमें से एक महिला को उसके पति ने जबरदस्ती रोक रखा था। जब उसने अन्यों के मुख से भगवान कृष्ण का वर्णन सुना तो उसने अपने हृदय के भीतर उनका आलिंगन किया और अपना वह भौतिक शरीर त्याग दिया जो भव बंधन का कारण है। भगवान गोविंद ने ग्वाल बालों को वह चार प्रकार का भोजन कराया। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान भगवान ने भी उन व्यंजनों को खाया। इस तरह अपनी लीलाएं संपन्न करने के लिए मनुष्य रूप में प्रकट होकर भगवान ने मानव समाज की रीतियों का अनुकरण किया। उन्होंने अपनी गौवों, ग्वाल मित्रों तथा गोपियों को अपने सौंदर्य, वाणी तथा कर्मों से प्रमुदित करते हुए आनंद भोग किया। तब ब्राह्मणों को चेत हुआ और वे बहुत अत्यधिक पछताने लगे। उन्होंने सोचा, हमसे बहुत पाप हुआ है क्योंकि हमने सामान्य मनुष्य के वेश में प्रकट हुए ब्रह्मांड के दो स्वामियों की याचना अस्वीकार कर दी है। अपनी पत्नियों की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रति दिव्य भक्ति और अपने को उस भक्ति से विहीन देखकर उन ब्राह्मणों को अतीव खेद हुआ और वे अपने आप को धिक्कारने लगे। ब्राह्मणों ने कहा, धिक्कार है हमारे तिभारा जन्म को, हमारे ब्रह्मचर्य तथा हमारी विपुल विद्वता को, धिक्कार है हमारे उच्च कुल तथा यज्ञ अनुष्ठान में हमारी निपुणता को। इन सबको धिक्कार है क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं। भगवान की माया शक्ति बड़े बड़े योगियों को मोह लेती है, तो हमारी क्या बिसात। ब्राह्मण होने के नाते हम सभी जाति के लोगों के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, फिर भी हम अपने सच्चे स्वार्थ के बारे में मोहित हो गए हैं। जरा इन स्त्रियों के असीम प्रेम को तो देखो जो इन्होंने अखिल विश्व के आध्यात्मिक गुरु भगवान के प्रति उत्पन्न कर रखा है। इस प्रेम ने गृहस्थ जीवन के प्रति उनकी आसक्ति मृत्यु के बंधन को छिन्न कर दिया है। इन स्त्रियों ने न तो द्विजों के शुद्धिकरण संस्कार कराए हैं, न ही किसी आध्यात्मिक गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारियों का जीवन बिताया है, न इन्होंने कोई तपस्या की है या आत्मा के विषय में मनन किया है या स्वच्छता की औपचारिकताओं का निर्वाह अथवा पावन अनुष्ठानों में अपने को लगाया है। तो भी इनकी दृढ़ भक्ति उन भगवान कृष्ण के प्रति है जिनका यशोगान वैदिक मंत्रों द्वारा किया जाता है और जो योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। और दूसरी ओर हम हैं जिन्होंने भगवान की कोई भक्ति नहीं की, यद्यपि हमने इन सारी विधियों को संपन्न किया है। निसंदेह हम लोग ग्रह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के असली लक्ष्य से पूरी तरह विपथ हो गए हैं। किंतु अब जरा देखो तो कि भगवान ने किस तरह इन सीधे साधे ग्वाल बालों के शब्दों से हमें समस्त सच्चे ब्रह्मवादियों के चरम गंतव्य का स्मरण दिलाया है। अन्यथा पूर्ण काम मोक्ष तथा दिव्य आशीर्वादों के स्वामी परम नियंता हमारे साथ यह विडंबना क्यों करते। हम तो सदैव उन्हीं के नियंत्रण में रहने के लिए ही हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने की आशा से सब कुछ एक और रख कर तथा अपना गर्व और चंचलता त्याग कर एकमात्र उन्हीं की पूजा करती हैं। ऐसे भगवान यदि याचना करते हैं तो यह अवश्य ही सबों को चकित करने वाली बात है। यज्ञ के सारे पक्ष, शुभ स्थान तथा समय, साज सामग्री की विविध वस्तुएं, वैदिक मंत्र अनुष्ठान, पुरोहित तथा यज्ञ की अग्नियां, देवता, यज्ञ अधिष्ठाता, यज्ञ हवि तथा प्राप्त होने वाले शुभ फल, ये सभी उन्हीं के ऐश्वर्य की अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि हमने योगेश्वरों के ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विषय में यह सुन रखा था कि उन्होंने यदु वंश में जन्म ले लिया है, किंतु हम इतने मूर्ख थे कि श्री कृष्ण को साक्षात भगवान नहीं समझ पाए। हम उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जिनकी बुद्धि कभी भी मोहग्रस्त नहीं होती, और हम हैं कि माया शक्ति द्वारा मोहित होकर सकाम कर्म के मार्गों पर भटक रहे हैं। हम भगवान कृष्ण की माया शक्ति से मोहग्रस्त थे, अतएव हम आदि भगवान के रूप में उनके प्रभाव को नहीं समझ सके। अब हमें आशा है कि वे कृपा पूर्वक हमारे अपराध को क्षमा कर देंगे। इस प्रकार कृष्ण की उपेक्षा करने से उनके द्वारा जो अपराध हुआ था उसका स्मरण करते हुए उनका दर्शन करने के लिए वे अति उत्सुक हो उठे, किंतु कंस से भयभीत होने के कारण उन्हें व्रज जाने का साहस नहीं हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद नामक 23वें अध्याय के श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।